सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस. और अगली एक्सप्लेनेशन जो इस आयत के बारे में स्कॉलर्स देते हैं वो देते हैं लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक और खूबसूरती का फैक्ट. और वो क्या है? वो ये है कि अरबी ज़ुबान की एक नॉर्मल सीक्वेंस अगर देखी जाए जिसकी बेसिस पर आप कहती हैं ना, जैसे हम उर्दू बोलने वाले जो हैं हमने उर्दू की बहुत धज्जियाँ बिखेर दी हैं. अगर हम अपने आज से यू कैन से 100 ईयर्स पहले एंसेस्टर्स को सुने जो उर्दू बोलते थे तो उनकी उर्दू में बहुत रिफाइनमेंट थी, वेरी रिफाइंड उर्दू. एक वक्त वो भी था कि लोग जब उर्दू बोलते थे तो दरमियान में किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ जो था वो मिक्सअप नहीं करते थे. आज भी बहुत से लोग नाराज़ होते हैं कि आप जब उर्दू बोल रही हैं तो उर्दू बोलें, दरमियान में इंग्लिश का लफ्ज़ क्यों आ जाता है. बट द पॉइंट इज़ कि अब हम उस इरा से निकल चुके हैं बिकॉज हमने ऐसे इसी माहौल में आँख खोली है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग लोग जो हैं वो मदर टंग उर्दू होने के बावजूद जो हैं वो बायलिंगुअल हैं. अब ये बन गया है पैटर्न. लेकिन जो असल उर्दू बोलने वाले थे, जो उर्दू लिटरेचर को आज भी समझते हैं, उनको पता है कि वो उर्दू का जुमला कंस्ट्रक्ट कैसे होता है. इन द सेम वे क्लासिकल अरबिक के रूल्स थे और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे. पोइट्स थे इनके अंदर, बलागा में बहुत आगे थे. आपको बताया था अरबिक लैंग्वेज वॉज देयर नेशनल प्राइड. तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल फॉर्मेट और सेट स्टैंडर्ड के ऊपर जुमला बनाते थे. तो स्कॉलर्स ने, जो कि खासतौर पर अरब स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुरान के इस रेगुलर कंस्ट्रक्शन को ब्रेक होते जब देखा है तो उन्होंने उसमें से भी खूबसूरती के साथ रूल्स डिराइव किए कि ये कब किया जाता था अरबी ज़ुबान में जब नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ी जाती थी. तो आयत नंबर 4 में क्लासिकल अरबिक की नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ी गई है. और जब भी क्लासिकल अरबिक की नॉर्मल सीक्वेंस तोड़कर कुरान ने किसी आयत को कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ हमेशा हमेशा एक उसूल आपको मिलेगा. इसको कहते हैं अल अहम अउला. अल अहम अहम अहमियत से है. अल अहम अउला यानी जो ज़्यादा अहम होगा. जब भी रेगुलर कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है तो जुमले में जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अहम था उसको अल्लाह ताला ने पहले मेंशन कर दिया. फाइन. सो जस्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इस जुमले की सीक्वेंस रेगुलर क्लासिकल अरबिक फॉर्मेट पर बनती है वलम यकुन कुफू वन अहदुन लहू. जो कुफू वन अहद है वो तो कोई भी इंसान नहीं है जो अल्लाह जैसा है, बट लहू यहाँ अल्लाह के लिए था. सो इस आयत में लहू जो अल्लाह के लिए आ रहा था वो सबसे अहम था. तो लहू को पहले लाया गया और जुमले को बना दिया गया जनरल सीक्वेंस को ब्रेक करके वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. सो ये नॉर्मल सीक्वेंस तोड़ना इस फॉर इख्तिसास, जिसको अरबी ज़ुबान में इख्तिसास कहते हैं, कि अल्लाह का पहले लाना, अल्लाह को पहले ख़ास करना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि सुनने वालों के अंदर अल्लाह का ग्रैंड्योर इन अल्फाज के साथ उनके दिल और दिमाग में उतर जाए. दिस इज़ द ब्यूटी. ताकि सुनने वाले को, चाहे वो 2020 में बैठ के इस आयत को सुने, उसको पता चल जाए जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. कोई किसी किस्म की साइंस अल्लाह से आगे नहीं जा सकती, कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट डायरेक्टिव अल्लाह से आगे नहीं जा सकता, कोई तुम्हारी प्लानिंग तुम्हें मुसीबतों से नहीं बचा सकती. जब तक कि तुम अपना कनेक्शन अपने रब के साथ, अपनी तौहीद के साथ और अपने इस्लाम के साथ मजबूत ना कर लो, हमारी प्लानिंग में बरकत नहीं आएगी. और ख़ास तौर पर दिस इज़ द रूल फॉर द मुस्लिम्स. जस्ट कीप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड एट दिस प्लेस ऑल्सो. कोई नॉन मुस्लिम अपनी बेस्ट प्लानिंग की वजह से दुनिया में ज़रूर कामयाब हो सकता है, बट उसकी कामयाबी उसको दुनिया की हद तक फ़ायदा देगी. बट फॉर मुस्लिम्स मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री विल डिफाइन इट सेल्फ द रूल फॉर द मुस्लिम्स. और वो रूल आपको जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जो आपको मुस्लिम हिस्ट्री से एक रूल अब तक मिलता है वो ये कि मुसलमान कभी कामयाब नहीं होंगे दुनियावी लिहाज से जब तक कि मुसलमान तौहीद को अपनी ज़िंदगी में बुलंद करने वाले आउट लाउड नहीं बनेंगे. मुसलमानों की प्लानिंग में बरकत नज़र आती है जब मुसलमान अपने रब के साथ सिंसियर होके दुनिया की प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं. So this is a high time in this pandemic time. This is a high time for each one of us. जो भी प्लान करें, चाहे आप अपने घर में मुलाजिम को बुलाने का ही प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी प्लान करें, चाहे अपनी कंपनी को खोलने की बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, चाहे अपनी फैक्ट्री को खोलने की बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वट एवर यू आर ट्राइंग टू प्लान, जस्ट डोंट टेक अल्लाह आउट फ्रॉम द पिक्चर. कीप अल्लाह ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर एंड देन डिसाइड ऑन द वर्ल्डली मैटर्स. अल्लाह से मदद मांगते हुए, स्ट्रेटजीज बनाते हुए, अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए. हमारा हर काम को करने से पहले दिल में ये जुमला बोलना, अल्लाह मैं क्या करूं, बस यूं समझें यू हैव कनेक्टेड द एंकर. आपने लेसो वहां फेंक दिया जहां लेसो आपको फेंकना चाहिए था. मुसलमान बनना बहुत आसान है, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है, अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक इस्तिकामत इख्तियार करना बहुत आसान है. याद रखें, जन्नत कमाने के ऑप्शंस कदम कदम पर मौजूद हैं. लेकिन कभी अपनी अक्ल को कुल नहीं समझें, कभी अपनी प्लानिंग को कुल नहीं समझें, कभी अपनी स्ट्रेटजी को कुल नहीं समझें. हम मोहताज हैं उस रब के जिसकी हर मखलूक मोहताज है. हम नहीं बच सकते, हम नहीं बचा सकते जब तक कि वो ना चाहे. सो डोंट फॉरगेट हिम, डोंट रिमूव हिम फ्रॉम द पिक्चर, नेवर एवर. कुछ भी डिसाइड करें, वलम यकुल लहू कुफू वन अहद. इख्तिसास है, लहू को पहले लाया गया है. हर चीज़ का काउंटर पार्ट है इस आयत का. इस इख्तिसास का एक रूल ये भी है, इस इख्तिसास की एक्सप्लेनेशन ये भी है क्यों जुमला तोड़कर अल्लाह को पहले लाया गया, ताकि हर इंसान, हर इस आयत को सुनने वाला ये जान ले, हर मखलूक का काउंटर पार्ट है, हर मखलूक का कुफ है, हर मखलूक की कहीं ना कहीं हम आहंगी हो जाएगी, हर मखलूक की किसी ना किसी से केमिस्ट्री मिल जाएगी, चाहे विद इन द स्पीशी हो चाहे आउट ऑफ द स्पीशी हो. आखिर इंसान की बिल्ली से हम आहंगी हो जाती है ना, आखिर इंसान की घोड़े से हम आहंगी हो जाती है, आखिर इंसान की आपके परिंदे पेट से हम आहंगी हो जाती है. सो हर मखलूक में ये कुफ्फू आ सकता है. अगर किसी के साथ किसी भी लेवल में, किसी भी लेवल में कोई मुशाबहत नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है. फॉर अ जनरल देयर विल बी अनदर जनरल, फॉर अ किंग देयर विल बी अनदर किंग, फॉर अ फॉल्स गॉड देयर विल बी अ फॉल्स गॉड, फॉर अ रिच पर्सन देयर विल बी अनदर रिच पर्सन, एंड फॉर अ प्लैनेट देयर विल बी अनदर प्लैनेट, एंड फॉर अ यूनिवर्स देयर विल बी अनदर यूनिवर्स. बट जस्ट कीप दिस इन माइंड, हर शय जो भी एग्जिस्ट करती है उसका कुफ है, सिवाय इख्तिसास लहू क्या बता रहा है, सिवाय अल्लाह के. अल्लाह का कोई कुफ नहीं है, अल्लाह का कोई कंपेरेबल नहीं है, अल्लाह की हम आंगी के साथ अल्लाह का काउंटर पार्ट कोई नहीं है. हमारे कुफ हो सकते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस कुफ, काफा वाला कुफ जिसको हम आहंगी कह रहे हैं किसी ना किसी लेवल के, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल वे विच यू कैन अप्लाई इन योर रिलेशनशिप्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कुफ हेयर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. और ये एक्सप्लेनेशन जब आप अरबी ज़ुबान से सीखते हैं और जब आप इसको अरबी ज़ुबान के हिसाब से ही कुरान की आयात की रोशनी में अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर मुस्तकिल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स किसी गलत डायरेक्शन में कर रही थी, मुझे तो डायरेक्शन कुछ और दी गई थी. सो दैट्स वाई कुरान इज़ ज़िक्रा, दैट्स वाई कुरान इज़ नूर, दैट्स वाई कुरान इज़ द ओनली सोर्स फॉर द गाइडेंस फॉर द ह्यूमैनिटी जो आपको और मुझे दुनिया और आखरत दोनों में कामयाब कर सकता है, और अहसन तरीके से ऑन अ एक्सेलेंट नोट कामयाब कर सकता है. वी जस्ट नीड टू कम एंड सिट अंडर द शेड ऑफ कुरान. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रिलेटेड दिस वर्ड ऑफ कुफ. कुफ को आप लिखने के लिए काफ फा वाओ लिखेंगे, सही? कुफू कह दें, कुफ कह दें, वाओ साइलेंट कर दें, कुफू वन कह दें, किसी तरह से भी कह दें, जस्ट कीप कुफ इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी, यू विल एंजॉय दिस इंशा अल्लाह. फॉर ऑन अ साइड नोट, इंशा अल्लाह आप में से जितनी बहनें भी कमेंट बॉक्स में लिखती हैं, इन अलग लिखते हैं, शीन अलिफ हमजा अलग लिखते हैं, एंड देन अल्लाह अलग लिखते हैं. सो डोंट फॉरगेट नेक्स्ट टाइम, इन शाह को मिलाकर नहीं लिखा जाता. ओके, द वर्ड कुफू वन. अभी आपको बताया हर मखलूकात के कुफ हो सकते हैं, इंसानों के भी कुफ होते हैं. कुफ का मतलब जो आपसे मिलता जुलता है. कुछ इंसानों के साथ आपकी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ इंसानों के साथ आपकी मीडियम सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ इंसानों के साथ आपकी बिल्कुल सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं, और कुछ इंसानों के साथ आप बिल्कुल मे बी सॉर्ट ऑफ किसी एक्सटेंट में कार्बन कॉपी बन जाते हैं. लाइक आपकी औलाद आदात में, शक्लो सूरत में, जेनेटिक कोड में मोर और लेस 1920 आपका कुफ हो सकती है, आपसे मिलती जुलती हो सकती है. आप अपने पेरेंट्स से आदात में, उठने बैठने में, डिसीजंस में उनके कुफ पर हो सकते हैं, उनसे मिलते जुलते हो सकते हैं. इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कुफ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो शौहर और बीवी में भी किसी ना किसी हद तक का कुफ होता है. सही. तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब इस टॉपिक पर अहादीस इकट्ठी की जाएं तो पता ये चलता है दैट इट्स अ स्मार्ट डिसीजन कि इंसान इस कफा के रूल के साथ, इस कुफू के रूल के साथ जो है वो प्रपोजल्स जो है वो तय करने की कोशिश करे, दीन को प्रेफरेंस पर रखे. लेकिन अगर दीन के साथ साथ आप घर की सोशल स्टेटस की कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं, इट्स कम्प्लीटली अलाउड इन इस्लाम, बिकॉज इससे आपका एक मेंटल रेपो जो होता है वो जल्दी डिवेलप होना शुरू हो जाता है. अच्छा, कमिंग ऑन अ डीपर इम्पैक्ट ऑफ कुफ, वन अरब तीन लेवल ऑफ कुफ इस्तेमाल किया करते थे, यानी तीन दर्जे, तीन ग्रेड्स बताते थे सिमिलैरिटीज के. हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर मैं बहुत नेक हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे हस्बैंड नेक नहीं हैं. वैसे ज़्यादा ख़वातीन को यही लगता है कि वो बहुत नेक हैं और उनके हस्बैंड नेक नहीं हैं. बस इतना मैं ज़रूर बता दूँ, ऐन मुमकिन है कि आपके शौहर में विजिबल खूबियाँ ना हों, बट कुछ ना कुछ खूबियों का मालिक तो हर इंसान ही होता है, कुछ ना कुछ खूबियों का मालिक. सो ये जो ख़वातीन अक्सर इस ये सवाल उठाते हैं कि दो कपल्स हैं जिसमें से एक कपल दोनों के दोनों एग्जैक्टली कंपैटिबल हैं, दोनों नेक हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे का जो है वो रेप्लिका नज़र आते हैं, सपोर्टर्स हैं दीन के, और दूसरी तरफ एक और कपल है जो कि बीवी ज़्यादा नेक है, शौहर नेक हैं, अच्छे हैं, बा अखलाक हैं, हलाल कमाते हैं, लेकिन वैसे नेक नहीं हैं. यू कैन से लोग कहते हैं कि एक कपल बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलैरिटी रखता है और नेक नेक लगता है, और एक में ज़रा स्लाइटली जो है वो ज़रा थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे लगता है. नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस टुडेज टॉक ऑफ थ्री दर्जात ऑफ कुफू, आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को समझ जाएंगे इंशाल्लाह. अरब तीन ग्रेड्स बताते थे कुफ के, सिमिलैरिटी के, और वो कहा करते थे कि कंपैटिबिलिटी के तीन लेवल्स हो सकते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पर पहली जो इस्तेमाल वो इस्तेमाल करते थे, पहला लेवल होता है सिमिलैरिटी का अननवीर. आपने अननवीर पढ़ा है कुरान में, नवीरुन द वार्नर, जो कि वार्न करने वाला है, रसूलों के लिए आता है नवीरुन व बशीरुन. सो जो पहला लेवल आता है कुफ का उसको नज़ीर ही कहते हैं. अच्छा, नज़ीर को अगर आप लिटरल फॉर्म में देखेंगे, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है वार्न करने वाला, वो रसूल जो कि वार्नर बनकर आते थे अपनी सोसाइटीज के लिए. लेकिन अगर आप इसकी डिक्शनरी मफहूम पर जाएंगी तो नज़ीर को कुफ के लेवल नंबर वन पर क्यों रखते थे, बिकॉज देखें रसूलों को जब किसी सोसाइटी में भेजते थे तो उसका रूल क्या था, अल्लाह उसी कौम में से एक शख्स को चुन लिया करता था, वो शख्स जो कि उस पूरे माशरे में सलाहियतों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा टॉप लेवल का होता था, वो उसी कौम का होता था. तो मुमासिलत शुरू हो गई, लेवल नंबर वन कुफ का शुरू हो गया, उसी कौम का था तो मुमासिलत हो गई. सही. अब ये जब मुमासिलत हुई, लेकिन किरदार में फ़र्क है बट नेशनैलिटी एक है, सो दिस इज़ द लेवल नंबर वन ऑफ मुमासिलत. मुमासिलत है, कुफ है, बट बिल्कुल बेयर मिनिमम लेवल का है. इसलिए अल्लाह ताला हर कौम के अंदर से ही वार्नर को, नज़ीर को बनाकर भेजा करता था. तो कुफ का पहला दर्जा जिसको आप बेयर मिनिमम कहते हैं, कंपैटिबिलिटी हो लेकिन कम हो, वो है नज़ीर की. लेट मी गिव यू अ सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल. मिसाल के तौर पर आपके पास एक किताब है, आई एम गिविंग यू तीनों टर्मिनोलॉजीज विद द एग्जांपल ऑफ अ बुक. आपके पास दो किताबें हैं जो देखने में दोनों ज़ाहिर किताब ही लगती हैं. अब आपके सामने एक बोतल हो और एक किताब हो, और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किताब कौन सी है, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि किताब कौन सी है. नो, आई एम सेइंग देखने में दोनों किताबें हैं, दिस इज़ द लेवल ऑफ नज़ीर. देखने में दोनों किताबें हैं लेकिन दोनों का साइज अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों के पेज की क्वालिटी अलग है, दोनों का कवर अलग है, दोनों का कॉन्टेंट इन साइड द बुक इज डिफरेंट. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कफा या कुफू ऑफ सिमिलैरिटी जो बेयर मिनिमम है. देखने में दो इंसान होंगे लेकिन उनका कंटेंट, उनके अखलाक, उनकी चॉइसेस, उनका किसी न किसी लेवल का जो है वो जिंदगी गुजारने का पैटर्न वो अलग होगा. दिस इज लेवल नंबर वन. नाउ कमिंग ऑन द लेवल नंबर टू. दूसरा कफा का लेवल जो अरब इस्तेमाल किया करते थे फॉर द सिमिलैरिटी वो था अशबीह. शबीह उर्दू में भी आप कहते हैं फॉर द रिजेंबलेंस. अशबीह का जो लेवल आता है इसमें दिस इज द सेकेंड ग्रेड. Just keep first grade in mind, a nadir, when something is similar to something, but it differ in many aspects. This is the level number one. Similar in one aspect, but differ in many aspects. Number two, level of kafa, jo ke ashabi hai. Isme kya hota hai? Let's say you have two books. Ab, now, isme zyada cheezein common hain, do kitabon mein, kam cheezein hain, जो के डिफर करती हैं. जैसे मैं कहूँ दो किताबें हैं, दोनों का साइज, कलर, क्वालिटी और कंटेंट सब मिलता है, बस कवर का फर्क है. ठीक है, ये है अशबी, यानी कि सिमिलैरिटी ज्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं. ये हो गया सेकेंड लेवल ऑफ कफा. सिमिलैरिटी ज्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं. मेजॉरिटी कपल्स इस शबी के लेवल पर होते हैं. एक्सेप्शनल नज़ीर के लेवल पर होते हैं. मेजॉरिटी जो है वो शबी के लेवल पर होते हैं. थर्ड एंड द रिफाइंड लेवल ऑफ सिमिलैरिटी जो कि दो इंसानों के दरमियान में समझा जा सकता है या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में समझा जा सकता है या दो हस्तियों के दरमियान में समझा जाता है. द थर्ड लेवल इज अल मसील. मिसाल से है जिसको आप अरबी में सा को सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं. अल मसील, मीम, सा, या, लाम. दिस इज द थर्ड लेवल. अल मसील में क्या होगा, जस्ट कीप टू बुक्स एग्जाम्पल इन माइंड. वेन यू हैव टू बुक्स एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द फोटो कॉपी ऑफ वन अनदर, ये वो आइडियल कपल्स होते हैं कफा के लेवल से, जो एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स. सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ कफा. The bare minimum, the middle one, the perfect one. जो इंसानों में ये तीन levels हो सकते हैं. अल्लाह ने क्या कहा है, इसी लफ्ज़ को अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुरैश के लोगों को अपना तारुफ बताने के लिए. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अहद बता रहा है इन तीन में से किसी एक लेवल पर अल्लाह के बराबर कोई नहीं आ सकता. ना कोई अल्लाह से फार अवे सिमिलर है, ना कोई अल्लाह से क्लोजली सिमिलर है. कोई अल्लाह के सिमिलर है ही नहीं. सिमिलैरिटीज के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए जब ये कहा गया वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आया नंबर 4 ऑफ सूरतुल इखलास. इंसान के कुफ हो सकते हैं, अल्लाह का कुफ कोई नहीं है. अल्लाह यूनिक है, अल्लाह ग्रेस वाला है, सब उसकी तरफ रुख करते हैं, उसमें कोई वीकनेस औलाद वाली नहीं है, उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. दिस इज अ लिटिल एसेंस ऑफ इनडेप्थ स्टडी ऑफ सूरतुल इखलास. अल्लाह की रहमत से अल्लाह हमें इसको इंटरनलाइज करने की तौफीक अता फरमाए. दिस सूरा इज सो इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज और इतनी अहम है कि दिल चाहता है कि अल्लाह ताला कम से कम एक एक इंसान को नहीं तो एक एक मुसलमान को इस इनडेप्थ का थोड़ा थोड़ा एसेंस तो दे ही दे, ताकि जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, जिनके कदम शेक कर रहे हैं, जो खुदा ना खास्ता अल्लाह से बदगुमान हो रहे हैं, जिनकी नेमतें कम होने की वजह से उनके लिए इस वक्त इबादत में फोकस करना मुश्किल हो रहा है, दिल चाहता है किसी तरह से उन मुसलमानों के ईमान को बढ़ाने के लिए रब का ये तारुफ, अल्लाह का ये तारुफ किसी तरह से उनके अंदर इंस्टेंटेनियसली डाल दिया जाए. अल्लाह वो जो हमारी मुश्किलात दूर करने वाला है. बताएं अपने आप को, आपके घर में जो भी मुश्किल है, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करेगा जब हम उससे क्लिंग कर जाएंगे. यही अल्लाह का तारुफ हमें फितनों से महफूज रखेगा. जस्ट कीप अ फर्म बिलीफ. यही इंशाल्लाह अल्लाह का तारुफ हमें शिर्क से बचाएगा. याद रखिए, मुश्किलात पड़ती हैं तो शिर्क में गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. یہ سورت کا تعارف ہمیں شرک سے بچائے گا, ڈپریشن سے ریسکیو کرے گا, جو آنے والے مسئلے ہیں اس میں سٹیڈ فاسٹ رکھے گا انشاءاللہ. ایسے ہی نہیں, اس کو سورت النجات کہا جاتا, اس کا نام یاد رکھ لیں. ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں اس کے 21 نام بتائے تھے, سورت المنفرہ یاد ہے؟ کون بھاگ جاتا ہے اس سورت کو پڑھنے سے؟ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. سورت المنفرہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے. شیطان بھاگے گا تو آپ کی مشکلات میں سے اندھیرے کم ہوں گے, اور اسلام کا نور اور اللہ کی معرفت کا نور آپ کو راستہ دکھائے گا دیٹ واٹ اسٹریٹجی یو شوڈ اڈاپٹ ان یور بزنس اور ان یور جاب اور ان یور فائنانس اور ان یور پلاننگ. یہی صورت ہے جو ہمیں شرک سے بچائے گی, اور جو شرک سے بچا وہ جہنم سے بچا. مت بھولیں اس صورت کا نام سورت المانے. کس چیز سے یہ انسان کو بچا لیتی ہے, کس چیز کو روکتی ہے؟ یہ صورت انسان کو جہنم اور قبر کی سزا سے بچا لے گی جس انسان نے اس کو انٹرنلائز کر کے زندگی گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورت الاخلاص پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ دن کا آغاز فجر سے, اور فجر میں آپ سورت الاخلاص پڑھتے تھے. آپ کی رات کی آخری نماز موسٹ آف دا ٹائم وتر ہوتی تھی, اور آپ کے وتر کی تیسری رکعت جو کہ وتر کی آخری رکعت ہوتی تھی, آپ اس میں سورت الاخلاص پڑھتے تھے. آپ کا معمول تھا تین وتر جن کو آپ پڑھتے تھے, اس میں پہلے میں آپ سورت الاعلیٰ صبح آتی ہے اما پارا میں, دوسرا سورت الکافرون, اور تیسرا سورت الاخلاص آپ پڑھتے تھے. تو آپ کا دن کا آغاز فجر کی سنتوں میں سورت الاخلاص سے, آپ کی رات کی آخری عبادت وتر میں آخری رکعت سورت الاخلاص, آپ رات میں سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر تین مرتبہ سورت الاخلاص پڑھتے تھے. یعنی امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے شب و روز کے اوقات میں سورت الاخلاص ہمیں یہ ریمائنڈر دے رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر دن اپنے آپ کو اللہ کی توحید یاد کرانی ہے, ورنہ شیطان ہمارے ایمان کو کرپٹڈ کر دیتا ہے. بالکل جیسے آپ کے کمپیوٹر کی ونڈو میں وائرس آ جائے تو وہ کرپٹڈ ہو جاتی ہے. یہ صورت فتنوں سے, مشکل سے, شرک سے, جادو سے, پینڈیمک سے, ہر شر سے, بیکٹیریا سے, وائرس سے, پیتھوجن سے, مائکرو آرگینزم سے, فائنینشیل پرابلم سے, دنیا کی مشکلات سے, بیماریوں سے, ہر شے سے یہ صورت بچائے گی. ڈونٹ فرگیٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شیلڈ دے کر گئے ہیں صبح شام کی, تین مرتبہ سورۃ الناس, تین مرتبہ سورۃ الفلق, اور تین مرتبہ سورۃ الاخلاص. سو ڈونٹ لوز یور پروٹیکشن, دس از اے گریٹ ٹریٹمنٹ. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کو اور مجھے اس صورت کا فہم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہمیں کنٹین کرنے کی اور عمل میں ریفلیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورۃ الاخلاص کی ان ڈیپتھ اسٹڈی مکمل ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.